दादा भगवान का आत्मविज्ञान नमो अरिहंताणम वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंधर स्वामी प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विचरते तीर्थंकर भगवान श्री सिमंधर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दादा भगवान का आत्मविज्ञान संपादक डॉक्टर निरुपहन अमीन, प्रकाशक दादा भगवान फाउंडेशन मद्रास श्री अजित सिंह पटेल, कॉपीराइट्स संपादक के अधीन, आवृत्ति प्रथम प्रत 2000 कॉपीज, ये कॉपीज इन ऑडियो या बुक फॉर्म में, उसका मूल्य है परम विनय और मैं कुछ भी जानता नहीं ये भाव, डेट 1997। त्रिमंत्र नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाणम च सर्वेसिं पढ़नम हवई मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रस्तावना डॉक्टर निरुपहन अमीन, जीवन में जो जो सामने आया उसका रियलाइजेशन किए बिना आदमी उसको अपनाता नहीं है। सब रियलाइजेशन किया, सिर्फ सेल्फ का ही रियलाइजेशन नहीं किया। अनंत अवतार से मैं कौन हूं की पहचान ही नहीं हुई है, इसलिए तो इस भटकन का अंत नहीं आता है। उसकी पहचान किस तरह से की सके, उसकी पहचान किस तरह से हो सके, वह तो जिसे उसकी पहचान हो गई हो वो ही अन्य को सरलता से पहचान करा सके। ऐसी विभूति यानी स्वयं ज्ञानी ही, ज्ञानी पुरुष यानी जिन्हें इस जगत में कोई भी चीज जानने की या कुछ भी करने का बाकी नहीं रहा है, वो ऐसे ज्ञानी परम पूज्य दादा श्री इस काल में अपने बीच में आके अपनी ही भाषा में हमें समझ में आए, ऐसी सादी देहाती भाषा में हर किसी का पहले का प्रश्न मैं कौन हूं का सहज में जवाब देते हैं, सहज में सुलझन देते हैं। इतना ही नहीं, परंतु ये जगत क्या है, किस तरह से चलता है, कर्ता कौन, भगवान क्या है, मोक्ष क्या है, ज्ञानी पुरुष किसे कहा जाए, सिमंदर स्वामी कौन है, संत पुरुषों गुरुओं और ज्ञानी पुरुष में क्या फर्क है, ज्ञानी को पहचानने की कौन सी रीत है, ज्ञानी क्या कर सकते हैं, उसमें भी परम पूज्य दादा श्री का अक्रम मार्ग क्या है, क्रम क्रम से तो मोक्ष मार्ग में बढ़ते आया आए हैं अनंत अवतार से, लेकिन लिफ्ट में लिफ्ट भी मोक्ष मार्ग में हो सकती है ना, मोक्ष मार्ग में लिफ्ट भी हो सकती है ना, अक्रम मार्ग से ये काल में संसार में रहकर भी मोक्ष है, और मोक्ष किस तरह से प्राप्त करना, उसकी संपूर्ण समझ और दशा की प्राप्ति परम पूज्य दादा श्री ने करवाई है। मैं कौन हूं की पहचान के बाद क्या अनुभूति रहती है, संसार पूरा करते करते भी संपूर्ण निर्लेप आत्मस्थिति की अनुभूति में रह सकते हैं, आदि व्याधि और उपाधि में भी निरंतर स्वसमाधि में रहते हैं, ऐसा चारों महात्माओं का अनुभव अक्रम विज्ञान की प्राप्ति के बाद का है। यह सर्व की प्राप्ति करने के लिए प्रस्तुत संकलन मुमुक्षुओं को मोक्ष मार्ग में दीवा डांडी समान बना रहे ऐसा ही है, वही अभ्यर्थना। जय सच्चिदानंद। अनुवादक का निवेदन, डॉक्टर निरुबेन अमीन। आत्मज्ञानी श्री अंबालाल मूलजी भाई पटेल, जिन्हें लोग दादा भगवान के नाम से जानते हैं, उनके श्री मुख से आत्म तत्व के बारे में जो जो वाणी निकली उसको टेप रिकॉर्ड करके संकलन था संपादन करके ग्रंथ में प्रकाशित की गई है। दादा भगवान का आत्मविज्ञान ग्रंथ में आत्मा आत्मज्ञान और जगतकर्ता के बारे में बुनियाद की बातें संक्षिप्त में संकलित की है। सुग्नवाचक की अध्ययने करते ही आत्म साक्षात्कार की भूमिका निश्चित बन जाती है, ऐसा अनेकों का अनुभव है। अंबालाल भाई को सब दादा कहते थे, दादा यानी पितामह, और दादा भगवान तो भीतर वाले परमात्मा को भी परमात्मा को वे कहते थे। देह भगवान नहीं हो सकता है, वह तो विनाशी है, भगवान तो अविनाशी है, और उसे वे दादा भगवान कहते थे जो जीव मात्र की भीतर है। प्रस्तुत अनुवाद में विशेष ख्याल यह रखा है कि वाचक को दादाजी की जवान सुनी जा रही है ऐसा अनुभव होता है। उनकी हिंदी उनके ही शब्द में कहे तो हमारी हिंदी यानी गुजराती हिंदी और अंग्रेजी का मिक्सचर है, लेकिन जब टी चाय बन जाएगी तब अच्छी बन जाएगी। अनुवादन की क्षति के लिए क्षमा प्रार्थना। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान कौन? प्रकट हुए दादा भगवान 1958 में जून 1958 की एक सुनहरी शाम 6 बजे का समय बड़ी भीड़ का सूरत स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 की व बेंच जिसके पर बैठे हुए अंबालाल मूलजी भाई पटेल रूपी मंदिर में नैसर्गिक क्रम से अक्रम स्वरूप में कई जन्मों से व्यक्त होने को तत्पर दादा भगवान संपूर्ण प्रकट हो गए और कुदरत ने सर्जा एक अद्भुत अध्यात्म का आश्चर्य। 1 घंटे में विश्व दर्शन हुआ। विश्व क्या है, कैसे चलता है, कौन चलाता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, कर्म क्या है, मुक्ति क्या है, इत्यादि इत्यादि विश्व के तमाम आध्यात्मिक प्रश्नों का संपूर्ण समाधान मिल गया। इस तरह कुदरत ने विश्व के चरणों में एक अजोड़ पूर्ण दर्शन समर्पित किया और उसके माध्यम बने श्री अंबालाल मूलजी भाई पटेल गुजरात के चरोतर इलाके के बादरण गांव के पटेल कंट्राक्ट का धंधो करने वाले फिर भी संपूर्ण वीतराग पुरुष। कुदरत ने दिया नजराने में अक्रम मार्ग। पूज्य श्री दादा श्री को जो प्राप्त हुआ वैसा दूसरों को भी 2 घंटे में प्राप्त करा देते थे। उनके ज्ञान प्रयोग द्वारा उसे अक्रम मार्ग कहा। अक्रम याने क्रम नहीं, क्रम याने सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर जाना, और अक्रम याने लिफ्ट मार्ग शॉर्टकट। दादा भगवान का स्वरूप। पूज्य दादा श्री स्वयं हरेक को दादा भगवान की पहचान देते हुए कहते थे कि यह तो आप देख रहे हैं, वो हो, यह तो आप देख रहे हो वो दादा भगवान नहीं है। दादा भगवान तो चौदह लोक के नाथ है, जो आप में भी हैं, हर एक में हैं, आप में प्रकट नहीं हुए हैं, अप्रगट हैं, और यहाँ मेरे अंदर संपूर्ण व्यक्त हो गए हैं। मैं खुद भगवान नहीं हूँ, मेरे अंदर प्रकट हुए हैं, उस दादा भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञानी के लक्षण प्रकाशमान बचपन से ही। दादा श्री का जन्म 7 नवंबर 1907 में वडोदरा के पास तरसाली गांव में हुआ था। पिता श्री मूलजीबाई और मातुश्री जवेरबा और पत्नी हीराबा थे। बचपन से ही दिव्य लक्षण थे। माताजी ने कंठी बांधने का कहा तो उन्होंने ना कहा। क्यों कंठी संप्रदाय की बांधने की पूछा तो माताजी ने कहा कि कंठी नहीं बांधोगे तो तुमको गुरु बगैर का सब कहेंगे। तब बालक अंबालाल ने कहा मुझे तो ज्ञान देगा वह मेरा गुरु होगा। सिर्फ कंठी बांधने से थोड़ी कोई गुरु हो जाता है। पाठशाला में ल सा अ LCM पहली बार शिक्षक ने सिखाया कि इन सारी रकमों में छोटे में छोटी हो, सब में समाविष्ट हो और अविभाज्य हो, ऐसी एक रकम ढूंढ निकालो। तब पूज्य श्री ने खड़े होकर कहा मास्टर इस व्याख्या पर से तो मुझे भगवान मिल गए। सभी में रहते हैं, छोटे में छोटे और अविभाज्य तो केवल भगवान ही है ना। वे 13 साल के थे तब कोई संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा जा बच्चा, भगवान तुझे मोक्ष में ले जाएगा। तब उन्होंने कहा भगवान मुझे मोक्ष में ले जाए ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। भगवान मोक्ष में ले जाए तो वह अब अंत तक मेरे सर पर ही रहेंगे ना। ऊपरी और मोक्ष दोनों विरोधात्मक हैं। मैट्रिक में जानबूझकर नापास हुए क्यों? पिताश्री और बंधुश्री के बीच की बातचीत उन्होंने सुन ली। मैट्रिक में पास हो जाए फिर अंबालाल को विलायत भेजेंगे और उसको सूबेदार बनाएंगे। यह सुनकर अंबालाल ने नक्की किया कि मैट्रिक में जानबूझकर नापास होने का, क्योंकि नौकरी तो जीवन भर करनी ही नहीं है, सर पर बॉस नहीं चाहिए। शादी के समय सर पर से साफा जरा खिसक गया और उनको विचार आया इस शादी का अंतिम परिणाम क्या, दोनों में से एक को तो विधुर होना ही पड़ेगा ना। शादी के समय, मोह के नशे के समय में भी कितना उत्कृष्ट वैरागी विचार। बालकों का जन्म होने के बाद 20 साल की उम्र थी तब एक लड़के का जन्म हुआ। मित्र मंडल को होटल में पार्टी दी। 2 साल के पश्चात फिर से होटल में पार्टी दी। मित्रों ने पूछा पार्टी किस बारे में? बाद में पूज्यश्री ने कहा मेहमान आए थे वे चले गए उस बारे में। फिर लड़की का जन्म हुआ तब भी पार्टी दी और 6 महीने के बाद दोबारा पार्टी दी, मेहमान आए थे उनके जाने की। अध्यात्म प्रति जीवन का मोड़, उनकी 22 साल की उम्र थी तब श्रद्धा चंद्र का ग्रंथ पढ़ा, तब से जीवन ने आत्म खोज की और मोड़ लिया। 1958 में आत्मज्ञान हुआ, उसके बाद हजारों को आत्मज्ञान की अनुभूति करवाई और मोक्ष के द्वार तक पहुंचाया। जीवन सादा सरल आडंबर रहित, किसके कभी भी न हुए गुरु या ना कोई संप्रदाय गादी गादीपति बने या बनाया, केवल आत्मधर्म प्राप्त करने का ही सिद्धांत। 1988 में स्थूल देह विलय हुआ, पैसे का व्यापार में दादाजी का सिद्धांत, व्यापार में धर्म चाहिए परंतु धर्म में व्यापार नहीं होना चाहिए, यह सिद्धांत पर सारा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। जीवन में कभी किसी के पास से पैसा भी नहीं लिया, ऊपर से धंधे का नफा उनके भक्तों का यात्रा करवाने में ही खर्च देते थे। उनके पास से ये सिद्धांत पाकर अंतेवासी पूज्य निरु बहन जी और श्री दीपक भाई उसी मार्ग पर चल रहे हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये ऑडियो बुक दादा भगवान का आत्मविज्ञान, उसकी अनुक्रमणिका है 14 चैप्टर्स में। पहला मैं कौन हूं, दूसरा बिलीफ ए रॉन्ग और राइट, तीसरा अलग करने का प्रयोग, फोर्थ जगत में ऊपरी कौन, फिफ्थ जगत में कर्ता कौन, सिक्स वेद ज्ञान कौन कराते हैं, सेवन्थ मोक्ष का स्वरूप क्या है, एट अक्रम मार्ग क्या है, नाइन्थ ज्ञानी पुरुष कौन, टेंथ श्री दादा भगवान कौन, इलेवेंथ श्री सिमंदर स्वामी कौन, ट्वेल्थ अक्रम मार्ग चालू ही है, थर्टीन आत्म दृष्टि होने के पश्चात, फोर्टीन्थ पांच आज्ञा की महत्ता, नित्य क्रम। ये बुक की परम पूज्य श्री दादा भगवान का आत्मविज्ञान और दादाश्री का सत्संग शुरू होने से पहले एक छोटी सी उनकी ही बनाई हुई प्रतिक्रमण विधि, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में देहधारी के मन वचन काया के योग भाव कर्म द्रव्य कर्म नौकर्म से भिन्न ऐसे हैं शुद्धात्मा भगवान, आपकी साक्षी में आज दिन तक मुझसे जो जो दोष हुए हैं उसकी क्षमा चाहता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता हूँ और फिर कभी भी ऐसा दोष नहीं करूंगा ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूं। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे दादा भगवान, मुझे ऐसे कोई भी दोष न करने की परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। जिसके प्रति दोष हुए उसका नाम लेने का पहली बार, और जो जो दोष हुए हो वो मन में जाहिर करने का, ये प्रतिक्रमण विधि परम पूज्य ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने हम सबको करने के लिए आदेश देशना दी थी। दादा भगवान का आत्मविज्ञान, मैं कौन हूं, चैप्टर वन। दादाश्री पूछते हैं क्या नाम है आपका, तो प्रश्नकर्ता जवाब देता है मेरा नाम चंदूलाल है। दादाश्री कहते हैं सचमुच आप चंदूलाल हो, हाँ जी दादाश्री, चंदूलाल तो तुम्हारा नाम है, चंदूलाल ये तुम्हारा नाम नहीं है? तुम खुद चंदूलाल हो या तुम्हारा नाम चंदूलाल है? वह तो नाम है दादाजी। हाँ तो तुम कौन हो? अगर चंदूलाल तुम्हारा नाम है तो तुम कौन हो? तुम्हारा नाम और तुम अलग नहीं? तुम नाम से अलग हो तो तुम कौन हो? यह बात आपको बराबर समझ में आती है कि मैं क्या कहना चाहता हूं? ये मेरा चश्मा कहे तो चश्मा और हम दो अलग है ना? इसी तरह आप खुद नाम से जुदा हो, ऐसा अभी नहीं लगता है आपको? जैसे दुकान को नाम देते हैं जनरल ट्रेडर्स, ये कोई गुनाह नहीं है, परंतु उसके शेठ को हम कहें कि ए जनरल ट्रेडर्स इधर आओ, तो शेठ क्या कहेंगे कि मेरा नाम तो जयंतलाल है और जनरल ट्रेडर्स तो मेरी दुकान का नाम है। इसलिए दुकान का नाम अलग है और शेठ अंदर अलग है, माल अलग है, सब अलग होता है ना? आपको कैसा लगता है? बराबर है दादाजी। परंतु इसमें तो नहीं तुम तो, नहीं मैं ही चंदूलाल हूं कहते हैं ना, इसलिए दुकान का बोर्ड भी मैं हूं और शेठ भी मैं ही हूं। आप चंदूलाल हो वह तो पहचानने का साधन है। अब बचपन से ही लोग चंदू चंदू कहा करते हैं, इसलिए उनको असर हो जाती है कि मैं चंदू हूं। जो नाम दिया जाता है वह करेक्ट मान लेते हैं। हम कहेंगे अरे वह नहीं है, तब वो कहेगा कि नहीं मैं ही वही हूं। मुझे सभी यही कहते हैं ना, खुद कौन है इसका भान नहीं है, इसलिए ये लोगों ने जो नाम रखा वो खुद ही ऐसी उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गई है, ऐसी गार्ड इफेक्ट हो जाती है कि उसमें बेभान अवस्था में मनुष्य रहता है, फिर खुली आंख से सोया करता है। मैं की पहचान, आप कौन हो उसकी कुछ तलाश तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा अंधेर कब तक चलेगा? ऐसा नहीं लगता कि खुद की तलाश खुद ना करे तो वह अंधेर कहा जाता है? सचमुच मैं कौन हूं यह रियलाइज नहीं करेंगे तब तक सारी बातें गलत निकलेगी। यह घड़ी लाए थे वो रियलाइज करके लाए थे कि नहीं? तो फिर आप कौन हो यह अपनी खुद की जात का ही रियलाइज नहीं किया? आप कौन हो, आपका कौन सा गांव है वही नक्की नहीं, आप कहां के रहने वाले हैं वो भी मालूम नहीं, किसी तरह की खबर नहीं है, और ऊपर से शादी भी करते हो, फिर सब पजल खड़े ही हो जाते हैं ना? रात को सो जाते हैं तो भी चंदूलाल होकर सो जाते हो, फिर सारी रात आरोपनामा जारी रहता है, और मैं कौन हूं यह रियलाइज हो जाए फिर आरोपनामा नहीं बंधा जाता है? आरोपनामा बंधा जाता है उसी से तो यह भटकने का है। खुद कौन है उसकी खुद को ही खबर नहीं, और नहीं है उसका आरोप करता है। ये तो खुद ने खुद की जात पर उल्टा आरोप किया। जो खुद नहीं है ऐसा खुद को खुद मानता है और वह स्वीकार किया और उसी रूप से बर्ताव करता है। इस गुनाह के कारण फिर अंतर्दाह निरंतर चलता है। यह अभी आपको सब वरीज चिंता है, वह आप मैं चंदूलाल हूं ऐसे कहते हो उससे है। अभी तक पढ़ाई की वह सब फिजूल गया ना, खुद की जात पर शंका नहीं पड़ी कि मैं चंदूलाल हूं या कौन हूं। ये एक खुद की जात पर कभी भी शंका ना पड़ी कि मैं चंदूलाल हूं या कौन हूं, ये एग्जैक्टली मालूम नहीं है। یہ ایگزیکٹلی معلوم ہوتا بھی نہیں ہے. اسرو کے آتم روپ نہیں ہے. ہاں بالکل تم چندولال نہیں ہو, ایسا نہیں ہے. آپ چندولال ہو پرنتو بائی ریلیٹو ویو پوائنٹ, ویوہار نئی درشتی سے یو آر چندولال از کریکٹ. پرشن کرتا پوچھتے میں تو آتما ہوں کنتو نام چندولال ہے. دادا شری کہتے ہاں لیکن ابھی چندولال کو کسی نے گالی دی تو آپ کو اثر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اثر تو ہوتی ہے. ہاں تو آپ چندولال ہو آتما نہیں ہو. آتما ہو تو آپ کو اثر نہیں ہوتی ہے, اور اثر ہوتی ہے اس لیے آپ چندولال ہی ہو. چندولال کے نام کی گالی دی تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہو. ارے چندولال کے نام کوئی غلط بولتا ہو تو دیوار پر کان رکھ کر سنتے ہو. ہم کہتے ہیں کہیں گے باقی بھائی دیوار آپ کو کیا کہہ رہی ہے, تب تو کہیں گے نہیں دیوال نہیں اندر میری بات چل رہی ہے وہ میں سن رہا ہوں. کس کی بات چل رہی ہے؟ تب کہیں گے کہ چندولال کی. اور ارے مگر آپ چندولال نہیں ہو, اگر آپ آتما ہو تو چندولال کی بات آپ نہیں سویکاریں گے. دادا سچ مچ تو میں آتما ہی ہوں نا, ابھی آپ آتما ہوئے نہیں ہے نا, آپ چندولال ہو نا. میں چندولال ہوں یہ آروپت بھاؤ ہے آپ کو, میں چندولال ہی ہوں ایسا بلیف بیٹھ گئی ہے, یہ رونگ بلیف ہے. ابھی ناو چیپٹر ٹو آتا ہے, بلیفیں رونگ اور رائٹ, اتنی ساری رونگ بلیفیں کے ہیڈنگ کے نیچے. میں چندولال ہوں یہ مانیتا, یہ بلیف تو آپ کی رات کو نیند میں بھی نہیں جاتی ہیں. اوپر سے لوگ اپنی شادی کراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم تو استری کے پتی ہو, اس لیے ہم نے پھر پتی پنا مان لیا. پھر میں اس کا پتی ہوں پتی ہوں ایسا کرتا ہے. ارے کوئی قائم کا پتی ہوتا ہے؟ ہمیشہ کا پتی ہو سکتا ہے؟ ڈائیورس فارغتی ہو جائے تو پھر دوسرے دن اس کا پتی رہتا ہے, اس لیے یہ سب رونگ بلیفیں بیٹھ گئی ہے. اس لیے میں چندولال ہوں یہ رونگ بلیف ہے, غلط مانیتا ہے. پھر یہ استری کا پتی ہوں یہ دوسری رونگ بلیف ہے. میں ویشنو ہوں یہ تیسری رونگ بلیف ہے. میں وکیل ہوں یہ چوتھی رونگ بلیف. میں اس لڑکے کا فادر ہوتا ہوں یہ پانچویں رونگ بلیف. اس کا ماما ہوں یہ چھٹی رونگ بلیف. میں گورا ہوں یہ ساتویں رونگ بلیف. میں 45 سال کا ہوں یہ آٹھویں رونگ بلیف. میں اس کا بھاگیدار ہوں یہ بھی رونگ بلیف. میں انکم ٹیکس بھرتا ہوں یہ ایسا کہو تو وہ بھی رونگ بلیف. ایسی کتنی رونگ بلیفیں بیٹھی ہیں, ایسی کتنی رونگ بلیفیں ہوں گی؟ بہت ساری دادا. جہاں جہاں میں کا آروپ کرتا ہے وہ سب رونگ بلیفیں ہیں. یہ رونگ بلیفیں نکالنے کی ہیں سب. اب رونگ بلیف کا سامان اپنے گھر میں بھرا ہو اور خود سکھی ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے سکھی کون ہوتا ہے, کیسی بلیف والا سکھی ہوتا ہے؟ جواب پرشن کرتا کہتے ہیں جس کو کوئی بلیف ہی نہ ہو وہ ہوتا گا. نہیں نہیں, بلیف نہ ہو تو چلتا ہی نہیں ہے نا, بلیف کے بنا تو رہ نہیں سکتا. لیکن رائٹ بلیف چاہیے. پرشن کرتا پوچھتے ہیں ہم ایک بھی بلیف ہی نہ رکھے ایسا نہیں ہو سکتا؟ دادا شری کہتے ہیں ایسا ہے کہ ہم کو یہاں گاندھی نگر سے پالن پور جانا ہو, اس کے بدلے گاندھی نگر سے سورت گئے تو اتنا واپس آنا پڑتا ہے یا نہیں آنا پڑتا ہے؟ اسی طرح یہ بلیف واپس آنے کے لیے رکھنے کی ہے. رونگ بلیف ہٹنے کا بعد رونگ بلیف ہٹنے کے بعد تھوڑا سمے رائٹ بلیف رکھے تو اصل جگہ پر آ جائے, پھر بلیف رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر کام بن گیا. اب کس طرح سے یہ رونگ بلیف نکال ڈالو گے؟ प्रश्नकर्ता कहते हैं वह मुझे मालूम नहीं है, उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। दादाश्री कहते हैं हाँ, वह रॉन्ग बिलीफ किस तरह से निकाल जाए, उसका रास्ता नहीं जानने से सारा जगत अनंत अवतार से भटक रहा है। खुद जानता है कि रॉन्ग बिलीफ है, परंतु किस तरह से निकाले, अनंत अवतार से एक भी बिलीफ निकाले बगैर चलता है सब। अभी सब हेडिंग आता है मैं का स्थान पलट। ये मैं चंदूलाल हूं वो अहंकार है, दादाश्री कहते हैं, क्योंकि जहां मैं नहीं वहां मैं का आरोप किया, उसका नाम अहंकार। प्रश्नकर्ता पूछते हैं मैं चंदूलाल हूं कहे उसमें अहंकार कहां है, मैं पैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं तैसा हूं, ऐसा कहे वो अलग चीज है, लेकिन सहज भाव से बोले उसमें कहां अहंकार है। तो दादाश्री कहते हैं कि सहज भाव से बोले तो भी अहंकार थोड़ा चला जाता है। मेरा नाम चंदूलाल है ये सहज भाव से बोला बोले तो भी वह अहंकार ही है, क्योंकि आप जो हो वो जानते नहीं और आप जो नहीं हो उसके उसका आरोप करते हो, ये सब अहंकार ही है ना। आप चंदूलाल हो वो ड्रामेटिक चीज है, इसलिए मैं चंदूलाल हूं ऐसा बोलने में हरकत नहीं है, मगर मैं चंदूलाल हूं वो बिलीफ में नहीं आना चाहिए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं हाँ नहीं तो मैं पद आ गया, अहम पद आ गया। दादाश्री कहते हैं मैं की जगह पे बैठे तो अहंकार नहीं है, मैं असल जगह पर नहीं है, आरोपित जगह पर है इसलिए अहंकार है। आरोपित जगह से मैं हट गया और असल जगह पे बैठ जाए तो अहंकार गया, इसलिए मैं को निकालने का नहीं है, मैं उसकी एक्ट प्लेस यथार्थ स्थान पर रखने का है। अभी सब हेडिंग आता है मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। सारा जगत मिथ्यात्व मिथ्यात्व कहते हैं कहता है, अरे मिथ्यात्व यानी क्या, यह कोई समझाता ही नहीं है, इसलिए तो यह सब भांजगर खड़ी हो गई है। यह रॉन्ग बिलीफ वही मिथ्यात्व है, यह गृहस्थी के कपड़े पहनना उसका नाम मिथ्यात्व नहीं है, अगर तो शादीशुदा हो तो भी वह मिथ्यात्व नहीं है। ये रॉन्ग बिलीफ यही मिथ्यात्व और राइट बिलीफ बैठे तो वो सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन यानी जो बिलीफ से आत्मा का दर्शन होता है उसको सम्यक दर्शन कहा है, इसलिए सम्यक दर्शन करने की जरूर है। ये रॉन्ग बिलीफें सब फ्रैक्चर हो जाए और राइट बिलीफ बैठ जाए तो सम्यक दर्शन हो गया। जब सम्यक दर्शन होता है तब जगत जैसा है वैसा ही यथार्थ दिखता है, वास्तविक दिखता है। अभी तक तो रॉन्ग बिलीफ है ऐसा ही जानते हैं नहीं थे ना, पहले तो ऐसे ही जानते थे कि मैं ही चंदूलाल हूं, परंतु ये तो सब टेम्पररी एडजस्टमेंट है। ऑल दीज रिलेटिव्स आर टेम्पररी एडजस्टमेंट्स एंड यू आर परमानेंट। ये सब व्यवहार हंगामी एडजस्टमेंट है और आप खुद कायम के हैं, कायम का भान नहीं है ना आपको, खुद से ही अनजान। इसका हेडिंग है खुद से ही अनजान। यह तो अनंत अवतार से खुद से ही गुप्त रहने का प्रयत्न है, खुद से ही गुप्त रहे और पराया सब जाने, यह अजायबी ही है ना। खुद से गुप्त कितना समय रहोगे, कब तक रहोगे, खुद कौन है यह जानने के लिए ही यह अवतार है। मनुष्य अवतार इसके लिए ही है कि खुद कौन है इसकी तलाश कर लेना, नहीं तो तब तक भटकोगे। मैं कौन हूँ ये जानना तो पड़ेगा ना, आप कौन है ये जानना पड़ेगा या नहीं जानना पड़ेगा। चैप्टर 3 आता है अलग करने का प्रयोग। एब्सोल्यूट होते ही माई छूटता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं तो ऐसी कौन सी टेक्निक है, मेथड है कि जिससे मैं कौन हूं ये जान सके। दादाश्री कहते आई यानी क्या और माई यानी क्या। आई यह वस्तु स्वरूप है और माई संयोगी स्वरूप है। संयोगी स्वरूप और वस्तु स्वरूप दोनों अलग ही है। संयोगी यानी जिसका संयोग हुआ है ये संयोगी स्वरूप। आई यह वस्तु स्वरूप है, स्वाभाविक वस्तु है। आई यह भगवान है और माई ये सब माया है। माई में सब माया भरी हुई है। माई बोले तो माया चिपकेगी। आप किसको किसको माई माई कहते हैं, आप किसको किसको माई माई कहते हो, जिसको आप माई कहते हो उसकी माया आपको चिपकेगी। जब माई ऐसे चिपक नहीं सकता, माई इज रिलेटिव टू आई। आई अकेला ही पराया नहीं है। माई जिसको कहने में आता है वो सब ही पराया है। पराई चीज को माई कहते हैं। माई यह सब पुद्गल है, सारा पुद्गल है। व्यवहार से बोलना पड़ता है कि ये मेरा है, परंतु खुद का करते नहीं है, उसको कुछ स्पर्श नहीं करता है। बोलने में हरकत नहीं, परंतु अंदर खुद का क्या क्या है वह नक्की कर ले और फिर व्यवहार से ये बोलना पड़े तो उसकी हरकत नहीं है। पुलिस वाला कहे कि ये घर किसका, तब कहो कि घर हमारा है, परंतु अंदर हमारा नहीं होता है। माई इज रिलेटिव डिपार्टमेंट, आई इज रियल। माई सापेक्ष डिपार्टमेंट है और आई निरपेक्ष है। इसलिए आई टेम्पररी नहीं होता है, आई परमानेंट है। माई टेम्पररी है इसलिए इसमें आपको आई ढूंढ निकालने का है। आई और माई का विभाजन का हेडिंग आता है। आपको कहां जाए कि सेपरेट आई एंड माई विद सेपरेटर। तो आप आई और माई सेपरेट कर लाएंगे सही, कर सकोगे, कर लाएंगे सही। आई एंड माई सेपरेट करने जैसा ही है या नहीं जगत में कभी जानना तो पड़ेगा ना। सेपरेट आई एंड माई, जैसे दूध का सेपरेटर होता है, उसमें से मिलाई को सेपरेट अलग अलग करते हैं ना, ऐसे ही ये अलग करने का है। आपको माई जैसी कोई चीज है। आई अकेला है कि माई साथ में है। प्रश्न करता है माई साथ होता है ना। दादाश्री कहते हैं माई में क्या क्या है आपका। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं मेरा घर और घर की सारी चीजें। दादाश्री कहते हैं सब आपकी कही जाती है और वाइफ किसकी कही जाती है, वह भी मेरी, और बच्चे किसके, वो भी मेरे। आप यह घड़ी और ये घड़ी किसकी, वो भी मेरी, और हाथ किसके हैं, हाथ भी मेरे हैं। फिर मेरा सर, मेरी बॉडी, मेरे पैर, कान मेरे, आंखें मेरी, ऐसा कहोगे। इस शरीर में सारी चीजें मेरी कहते हो, तब मेरा कहने वाला आप कौन हो, ये सोचा ही नहीं है। माई नेम इज चंदूलाल बोलो और फिर कहो मैं ही चंदूलाल हूं, इसमें कुछ विरोधाभास नहीं लगता है आपको, लगता ही है ना दादा। आप चंदूलाल हो, इसमें आई एंड माइंड दो हैं। ये आई और ये माई दो रेलवे लाइन अलग ही है, पैरेलल ही रहती है, किसी दिन एकाकार होती ही नहीं है, फिर भी आप एकाकार मानते हो ये समझकर इसमें से माई को सेपरेट कर डालो। आप में जो माई है उसे बाजू पर रखो, माई हार्ट तो उसको बाजू पर रखो। इस शरीर में से जो जो जे इस शरीर में से और क्या क्या अलग सेपरेट करने का है, प्रश्नकर्ता कहते हैं पैर, इंद्रियां, हाँ सभी, पांच इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, सभी। फिर माई माइंड कहते हैं कि आई एम माइंड कहते हो, माय माइंड कहते हैं, हाँ मेरी बुद्धि कहते हैं ना, हाँ जी मेरे चित कहते हैं ना, हाँ, और माय इगोइज्म बोलते हैं कि आई एम इगोइज्म बोलते हैं, मेरा अहंकार बोलते हैं कि मैं अहंकार हूं, वे ऐसा बोलते हैं। तो माय इगोइज्म, हाँ माय इगोइज्म बोले तो उतना अलग कर पाओगे, लेकिन उसके आगे जो है उसको, उसमें आपका हिस्सा क्या है वह आप जानते नहीं हो, इसलिए फिर पूरे पूरा सेपरेशन होता नहीं है। आप कुछ हद तक जान सकोगे, सब आप स्थूल चीजें ही जानते हो, सूक्ष्म में जानते ही नहीं हो। ये तो सूक्ष्म माइनस सूक्ष्म को कम करने का है, उसके बाद सूक्ष्मतर बात करने का है, फिर सूक्ष्मतम बात करने का है, यह ज्ञानी पुरुष का ही काम। एक एक स्पेयर पार्ट सब काम माइनस करते करते गए तो आई और माई ये दो अलग हो सकेंगे ना, आई और माई दो अलग करते ही अंत में क्या रहेगा, माई को बाजू पर रखो तो अंत में क्या रहेगा, प्रश्नकर्ता कहते हैं आई दादाश्री। तो आई वही आप हो, बस आई वो रियलाइज, आई को रियलाइज करने का है। प्रश्नकर्ता कहते तो सेपरेट करने, तो सेपरेट करके ऐसा जानने का कि है कि जो बाकी रहता है वह मैं हूं, हाँ सेपरेट करके जो बाकी रहा वह आप खुद ही हो, वह आप खुद ही हो। आय उसकी तलाश तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए ये सरल मार्ग है ना, आय और माय जुदा करे तो। वैसे तो ये सरल मार्ग है दादाश्री, परंतु वह सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम अलग हो तो सच ना, वो ज्ञानी के बिना नहीं बनता है ना, हाँ वो ज्ञानी पुरुष दिखा देते। इसलिए हम कहते हैं ना, सेपरेट आई एंड माई विथ ज्ञानीज सेपरेटर। इस सेपरेटर को शास्त्रकार क्या कहते हैं, भेद ज्ञान कहते हैं। भेद ज्ञान बगैर आप किस तरह से काम कम करेंगे माइनस करोगे, कौन कौन सी चीजें आपकी हैं और कौन कौन सी आपकी नहीं है, वह दोनों का आपको भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान यानी मेरा सब ये और मैं अलग हूं इससे, इसलिए ज्ञानी पुरुष के पास उनके टच में सानिध्य में रहे तो ये भेद ज्ञान प्राप्त हो सकता है, फिर अपने को अलग हो जाता है। आय और माय का भेद हो जाए तो सब सरल है ना, मैंने ये रीत बताई उस तरीके से अध्यात्म सरल है या कठिन है, नहीं तो शास्त्र पढ़ पढ़ के इस काल के मनुष्यों का दम निकल जाएगा। प्रश्नकर्ता कहते हैं आप जैसे की जरूरत है समझाने के लिए, हाँ जरूर है, किंतु ज्ञानी पुरुष तो बहुत होते ही नहीं है ना, किंतु कभी कोई काल में होते हैं तब काम निकाल लेना अपना, ज्ञानी पुरुष का सेपरेटर ले जाना एक आध घंटे के लिए, उसका किराया बिराया नहीं होता है, उससे सेपरेट कर लाओ, यानी आय अलग हो गया, नहीं तो नहीं होगा। आय अलग हो गया यानी सब काम हो गया, ये सारे शास्त्रों का सार इतना ही है। भौतिक सब चाहिए तो बाबा होना पड़ेगा, और आत्मा होना हो तो मेरा सब सौंप देना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष को माय सौंप देंगे तो आय अकेला ही आपके पास रहेगा। आय विथ माय उसका नाम जीवात्मा, मैं हूं और ये मेरा, ये सब मेरा है ये जीवात्मा दशा, और मैं ही हूं और मेरा नहीं है ये परमात्मा दशा। इसलिए माय की वजह से मोक्ष नहीं होता है। मैं कौन हूं का भान हो जाए तो माय छूट जाता है, माय अगर छूटा तो सब छूट गया। चैप्टर 4 आ गया, जगत में ऊपरी कौन। नमो वीतरागाय, ये दादा भगवान का आत्मविज्ञान की ऑडियो बुक है। चैप्टर 4 अब साइड 2 पे शुरू होगा। जगत में ऊपरी कौन, ज्ञानी ही पहचान कराने करावे मैं की। प्रश्नकर्ता पूछते हैं मैं कौन हूं, वो जानने की जो बात है वो इस संसार में रहकर किस तरह से हो सकता है दादाश्री, तो कहां रहकर जान सकते हो। संसार से के सिवा और कोई जगह है कि वहां रह सकेंगे। इस जगत में सारे संसारी ही है और सब संसार में ही रहते हैं। यहां मैं कौन हूं ये जानने के को मिले ऐसा है। आप कौन हो ये समझने के लिए ही ये साइंस है। यहां पर यहां आना, हम आपको पहचान कराएंगे। ये हम नमो वीतरागाय, ये सर्वज्ञ श्री दादा भगवान का आत्मविज्ञान साइड 2 टेप नंबर 1 चैप्टर 4। ये हम आपको जितना पूछते हैं वो आपको हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि ये सब आप खुद करके लाओ, आपसे हो सके ऐसा नहीं है। इसलिए हम आपको क्या कहते हैं कि हम आपको सब कर देंगे, उसकी बरीज फिकर आपको नहीं करने की। यह तो पहले जानने का कि सचमुच हम क्या है और क्या जानने जैसा है, सच्ची बात है, करेक्टनेस क्या है, वर्ल्ड क्या है, ये सब क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा है, परमात्मा है ही, और ये सब अपने पास ही है और बाहर कहां ढूंढते हो। लेकिन कोई अपने को वह दरवाजा खोल दे तो दर्शन होगा ना। ये दरवाजा ऐसा बंद हो गया है कि कोई दिन खुद से खुल सके ऐसा है ही नहीं। ये तो खुद तैर गए हो, ऐसे तरण तारण हार ज्ञानी पुरुष का ही काम है। सब हेडिंग है खुद की ही भूलें, खुद की ही ऊपरी। भगवान तो आपका स्वरूप है, आपका कोई ऊपरी ही नहीं, कोई बाप भी ऊपरी नहीं, आपको कोई कुछ करने वाला ही नहीं है। आप स्वतंत्र ही हो, सिर्फ आपको, आपकी भूलो से ही आप बंदे हो। आपका ऊपरी कोई है नहीं और मैं कोई जीव की दखल भी नहीं है। ये सब इतने सारे लोग हैं, परंतु कोई भी जीव की आप में दखल नहीं है। और ये लोग भी जो कोई दखल करते हैं वो आपकी भूल से ही दखल करते हैं। आप दखल करने के लाए हो, आप दखल करके लाए हो, उसका ही फ फल है, यह मैं खुद देख के कहता हूं। हम इस दो वाक्यों में गारंटी देते हैं तभी मनुष्य मुक्त रह सकता है। हम क्या कहते हैं कि आपका ऊपरी वर्ल्ड में कोई भी नहीं है, आपका ऊपरी आपकी ब्लंडर्स और आपकी मिस्टेक्स हैं, ये दो ही नहीं हो तो आप खुद परमात्मा ही हो, और आप में किसी भी जरा किसी की जरा भी दखल नहीं है। कोई जीव को किंचित मात्र दखल कर सके ऐसी स्थिति में नहीं है, ऐसा ये जगत है। ये दो वाक्य सब समाधान लाते हैं। अभी चैप्टर 5, जगत में कर्ता कौन, जगत कर्ता की वास्तविकता। फैक्ट, वस्तु नहीं जानने से ही ये सब पहली हुई है। अब आपने जो जाना है वो जानना है कि जो नहीं जाना वो जानने का है। जगत क्या है, किस तरह से बना, कौन बनाने वाला है, अपने को इस जगत से क्या लेना देना है, अपने साथ अपने संबंधियों को क्या लेना देना, इसके आधार से बिजनेस है, किसके आधार से बिजनेस है, मैं करता हूं या करता कोई और है, ये सब जानने की जरूरत तो है ही ना। हाँ जी, कहते हैं इसलिए इसमें शुरू में क्या जानना है उसकी पहले बातचीत करें। जगत किसने बनाया है ऐसा आप पता है, किसने ऐसा पहली वाला जगत बनाया होगा, आपका क्या मत है? हाँ जी, ईश्वर ने ही बनाया होगा, तो फिर इस जगत को चिंता में क्यों रखा है, चिंता के बाहर की अवस्था ही नहीं है। हाँ, सब चिंता करते हैं ना। हाँ, लेकिन उसने ये जगत बनाया तो चिंता वाला क्यों बनाया, उसको पकड़कर बुलाओ, सीबीआई वाले को भेजो, किंतु भगवान गुनेगार है ही नहीं, ये तो लोगों ने उनको गुनाहगार बनाया। वास्तव में मैं तो गॉड इज नॉट क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एट ऑल, भगवान इस जगत का बनाने वाला बिल्कुल नहीं है, ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, सिर्फ वैज्ञानिक संयोगिक पुरावे हैं, इसलिए ये सब कुदरती रचना है। उसको गुजराती में मैं व्यवस्थित शक्ति कहता हूं, ये बहुत सूक्ष्म बात है। सब हेडिंग उसको मोक्ष नहीं कहा जाता। छोटा बालक हो वो भी कहता है कि भगवान ने बनाया, बड़ा संत हो वो भी कहेंगे कि भगवान ने बनाया, ये बात लौकिक है, अलौकिक नहीं है। ये भगवान अगर क्रिएटर होते ना तो अपने कायम के लिए ऊपरी बनते और मोक्ष जैसी चीज नहीं रहती, परंतु मोक्ष है, भगवान क्रिएटर नहीं है। मोक्ष को समझने वाले लोग भगवान को क्रिएटर नहीं मानते। मोक्ष और भगवान क्रिएटर ये दो विरोधाभास बातें हैं। क्रिएटर तो कायम का उपकारी हुआ, और उपकारी हुआ वह अंत तक ऊपरी और ऊपरी ही रहेगा। क्रिएटर हो तो कायम के लिए ऊपरी है ना, और क्रिएटर हो तो उसकी शर्म तो हमें कायम रखनी पड़ती है ना। मोक्ष में गए तो भी आप क्यों कुछ बोलते नहीं? हाँ दादा, वो तो अपना परमानेंट शेठ हुआ। हाँ, परमानेंट शेठ हुआ तो उसे मोक्ष कहा ही नहीं जाएगा, उससे तो अपनी बीबी के साथ मोक्ष अच्छा, भजिए खाएंगे, पकौड़े खाएंगे और गाली भी खाएंगे, उसकी गाली खाके भी ये मोक्ष अच्छा। सब हेडिंग तो भगवान को किसने बनाया। अब भगवान ने बनाया ऐसा हम यदि अलौकिक तरीके से कहे तो लौकिक लॉजिक वाले हमें पूछेंगे कि भगवान को किसने बनाया, इसलिए प्रश्न खड़े होते हैं। लोग मुझे कहते हैं, हमको लगता है कि भगवान ही जगत के कर्ता हैं। आप ना कहते हो, परंतु आपकी बात मानने में नहीं आती है। तब मैं पूछता हूं कि अगर मैं कबूल करूं कि भगवान करता है, तो इस भगवान को किसने बनाया है वह तुम मुझे कहो, और उस बनाने वाले को किसने बनाया। कोई भी करता हो तो उसका करता होना चाहिए, ये लॉजिक है, परंतु उसका फिर अंत नहीं आता है, इसलिए ये बात गलत है। नेक्स्ट हेडिंग, न आदि न अंत जगत का, इसलिए किसी के बनाए बगैर बना है, किसी ने इसको बनाया नहीं है, किसी ने किया नहीं, इसलिए अब हम किसको इसमें पूछे। मैं भी ढूंढता था कौन ऐसा जिम्मेदार है कि जिसने ये सब धांधल मचाई। मैंने हर जगह पे पूरी तलाश की, परंतु कोई जगह पे मुझे मिला नहीं। मैंने फॉरेन के साइंटिस्टों को भी कहा कि गॉड क्रिएटर है, उसकी साबिती देने के लिए मेरे साथ थोड़ी बातचीत करो। अगर वो क्रिएटर है तो उसने कौन सी साल में क्रिएट किया वो कहो। तब वो कहने लगे कि साल की हमको खबर नहीं है। तो मैंने पूछा, परंतु इसका बिगिनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तब वे कहने लगे, हाँ बिगिनिंग हुआ है। क्रिएटर कहाँ, यानी बिगिनिंग होना ही होगा ही ना। क्रिएटर कहाँ यानी बिगिनिंग होगा ही ना। जिसका बिगिनिंग होता है उसका एंड आता है। ये तो एंड वगैर का जगत है, बिगिनिंग हुआ ही नहीं फिर एंड कहाँ से आएगा। ये तो अनादि अनंत है, जिसका बिगिनिंग नहीं हुआ है हो उस बनाने वाले हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं लगता है। अभी हेडिंग, सब हेडिंग, भगवान का सच्चा पता। ये फॉरेन के साइंटिस्टों ने पूछा कि तो क्या भगवान नहीं। तब मैंने कहा, भगवान ना हो तो जगत में तो लागनी और सुख और दुख ये सब जो लगता है उसका कोई अनुभव ही ना होता। इसलिए भगवान अवश्य है। वे मुझे पूछने लगे, भगवान कहाँ रहते हैं। मैंने कहा, आपको कहाँ लगते हैं। तब वे कहने लगे, ऊपर। मैंने कहा, ऊपर कहाँ रहते हैं वे, उसकी गली नंबर क्या है। गली जानते हो आप, स्ट्रीट नंबर, पत्र पहुंचे, ऐसा सच्चा एड्रेस है आपके पास। ऊपर तो कोई बाप भी नहीं है। सब जगह पे मैं आकर आया, सब लोग कहते हैं कि ऊपर है, ऊपर ऊपर गलती करते हैं। इसलिए मेरे मन में ऐसा लगा कि ये लोग कहते हैं इसलिए कुछ होना चाहिए। इसलिए मैं ऊपर सब जगह पर तलाश करके आया तो ऊपर खाली आकाश ही है, ऊपर कोई नहीं मिला, ऊपर तो कोई रहता ही नहीं है। अब ये फॉरेन के साइंटिस्ट मुझे कहने लगे, सच्चा एड्रेस देंगे भगवान का। मैंने कहा, लिख लो, गॉड इज इन एवरी क्रीचर, वेदर विजिबल और इनविजिबल, नॉट इन क्रिएशन। भगवान सब जीव मात्र के अंदर है, फिर आंख से दिखे या ना दिखे ऐसे सब के अंदर, लेकिन क्रिएशन के अंदर नहीं है। ये टेप रिकॉर्डर क्रिएशन कहा जाएगा। जितनी मनुष्यकृत चीजें हैं, मनुष्य ने बनाई हुई चीजें हैं, उसमें भगवान नहीं है। कुदरती बनावट है, उसमें भगवान है। इसलिए एवरी क्रीचर, वेदर विजिबल और इनविजिबल में है। हर जीव मात्र के अंदर फिर वह दिख सके और न दिख सके ऐसे में भी है। आप और मेरे बीच में न दिख सके ऐसे जीव यानी आँख से भी न दिख सके, दूरबीन से भी न दिख सके ऐसे बहुत जीव है। उसके अंदर भगवान खुद रहे हैं। अब उनका धंधा क्या है? वे जीव मात्र को प्रकाश ही देते हैं। आपको वो प्रकाश का जो उपयोग करना हो सो करो। चोरी करनी हो तो आपकी जिम्मेदारी पर चोरी करो, और दान देना हो तो आपकी जिम्मेदारी पर दान दो। प्रकाश का आपको जो उपयोग करना हो सो करो। आप भी ऊपर वाला है ऐसे मानते हो ना? लेकिन ऊपर कोई नहीं है, ऊपर है ये रॉन्ग बिलीफ है। इसलिए मैं खुला करने आया हूं कि ये सब मान्यताएं रॉन्ग है, और खुला किए बिना ठिकाना नहीं पड़ेगा। ये तो पुरानी रूढ़ी जाती नहीं है। सब हेडिंग द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। द वर्ल्ड इज पजल इटसेल्फ, ये इटसेल्फ पजल हुआ है। भगवान ने ये पजल नहीं किया। अगर भगवान ने पजल किया होता तो उसके उसको पकड़ के मंगवाना पड़ता कि ये लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, बेचारे घूंट घूंट कर मरे जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने ये सब पजल नहीं किया। भगवान या तो भगवान ही है, परमानंदी है, ऐसे एक ऐसे कायम है। हम बगैर समझे गलत आक्षेप करते हैं, यह अपनी भूल है। इसलिए यह जगत अपने आप ही पहली हो गया है, इसमें किसी और की जरूरत पड़ी नहीं है। अभी कोई आदमी कहेगा ये चंदूलाल में अक्कल नहीं है, तो उस समय पजल खड़ा होगा, होगा या नहीं होगा? हाँ जी होगा। अभी मुझे कोई गाली दे, दादाश्री कहते हैं, अभी मुझे कोई गाली दे तो मुझे पजल नहीं खड़ा होगा, और आपको पजल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप बंधे हुए हो। आप बंधे हुए हो, अज्ञानता की रस्सी में बंधे हुए हो, अज्ञान के वायरों से बंधे हुए हो। दादाश्री ये पजल सॉल्व किस तरह से होगा? दादाश्री कहते हैं देयर आर टू व्यू पॉइंट्स टू सॉल्व दिस पजल। वन रिलेटिव व्यू पॉइंट, वन रियल व्यू पॉइंट। रियल इज परमानेंट, रिलेटिव इज टेम्पररी। All these relatives are temporary adjustments and you are permanent. इस समस्या को हल करने की दो दृष्टि बिंदु है, एक सापेक्ष दृष्टि बिंदु और दूसरा निरपेक्ष दृष्टि बिंदु। निरपेक्ष शाश्वत है और सापेक्ष नाशवंत है। इस शाश्वत की तलाश करनी चाहिए रिसर्च में, फिर पजल हल हो जाएगा। नहीं तो ये पजल जहां तक हल नहीं होता है वहां तक सारे जगत के साधु संत सभी इस पजल में डिसॉल्व हो गए हैं। आपको यदि ये पजल सॉल्व करना है हो तो यहां मैं एक घंटे में सब पजल सॉल्व कर दूंगा, फिर कोई भी स्थिति में आपको पजल नहीं होगा। एक दफे समझ लेने में आए कि जगत क्या है, उसको फिर सब रटने की जरूरत नहीं है। एक दफा जान लेने की ही जरूरत है। ये बनाने वाला कौन है, किस लिए बनाया, भगवान कौन है, कौन ये जगत चलाता है, ये सब क्या है, अपना स्वरूप क्या है, ये सब जान लेने का के बाद उकेल आ गया। सब हेडिंग साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसलिए बातचीत करो, जो भी कोई बातचीत करनी हो वो सब करो। ऐसी बातचीत करो कि जिससे अपने सब खुलासे हो जाए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावे, वो नहीं समझ में आया। दादाश्री, ये सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार से है। जगत में एक भी परमाणु चेंज हो सके ऐसा नहीं है। अभी आप खाना खाने को बैठेंगे ना, तो आपको मालूम नहीं है कि मैं क्या खाने वाला हूं। बनाने वाले को भी पता नहीं है कि कल खाने में क्या बनाने का है। ये सब किस तरह से हो जाता है, ये अजायबी है। कितना आप खा सकोगे या नहीं खा सकोगे, ये सब परमाणु मात्र बना हुआ है। आप आज मुझे मिले वो कौन से आधार से हुआ, ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, अति अति गुह्य कारण है, ये कारण को ढूंढ निकालो। प्रश्नकर्ता, पर इसको ढूंढना किस तरह से। दादाश्री, अभी आप यहां आए उसमें आपका आने का कोई पुरुषार्थ नहीं है। अभी आप यहां आए उसमें आपका आने का कोई पुरुषार्थ नहीं है। वो तो आप मानते हो, इगोइज्म, अहंकार करते हो कि मैं आ और मैं गया। आप आज आप कहो कि मैं आया, तो मैं कहूंगा कि कल क्यों आए नहीं। तब आप ये पर दिखाओगे, तब आप ये पैर दिखाओगे, यानी हम क्या समझ जाएंगे। प्रश्नकर्ता के पैर दुखते थे। हाँ, पैर दुखते थे, पैर का नाम दो, तो ना समझ में आए कि आप आने वाले कि पैर आने वाले, यानी मैं ही आया हूं कहा जाए ना, आप ही आए हैं नहीं। ये पैर दुखे फिर आप आओगे नहीं। मेरी खुद की इच्छा आने की थी इसलिए आया हूं दादा। हाँ, इच्छा तो आपकी थी इसलिए आए, परंतु ये पैर, ये सब ठीक हो तो आ सके ना, ठीक ना हो तो नहीं आ सकेंगे, बराबर है। इसलिए आप खुद यहां अकेले आ सकते हो। जैसे एक आदमी रथ में बैठकर इधर आया और कहने लगा, मैं आया मैं आया, तब हम कहेंगे ये पैर में तो आपको पैरालिसिस हुआ है, तो किस तरह से आप आए। तो वो कहेगा कि रथ में आया, लेकिन मैं ही आया हूं, मैं ही आया। अरे लेकिन रथ आया कि आप आए, तब वो कहेगा कि रथ आया। तब मैं कहता हूं कि रथ आया कि बैल लेके आए, यानी बात कहां से कहां है। लेकिन लोगों ने उल्टा मान लिया है ना, ये सारे संजोग ठीक हो तो ही आ सकते, नहीं तो नहीं आ सकते। सर दुखता हो तो आप आ गए हो तो भी वापस चले जाएंगे। हम आने वाले जाने वाले हो तो फिर सर दुखने का बहाना निकाल नहीं सकते ना। अरे तब सर आया था कि आप आए थे। अगर आपको रास्ते में कोई सामने मिले और कहे चलो चंदूलाल मेरे साथ, तो फिर आप वापस जाओगे। इसलिए संयोग ठीक मिले यानी यहां आने तक कोई रुकावट नहीं मिली, तब आ सके ना। सवलत वाला सिद्धांत का सब हेडिंग है। इसलिए ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। कितने सारे संयोग इकट्ठे होते हैं तब कार्य होता है। उसमें अहंकार करते करके कि मैंने किया कहकर चलाता है, लेकिन यह तो अच्छा होता है तो मैंने किया, और अच्छा नहीं होता है तो मैंने, मेरे संजोग अभी बराबर नहीं है, ऐसा अपने लोग कहते हैं ना, संजोगों को मानते हैं ना अपने लोग। हाँ जी, कमाता है उसका गर्व रस खुद खाता है, और जब नुकसानी आती है तब कुछ और बहाना दिखाता है। हम पूछ क्यों शेठ, आप क्यों ऐसे हो गए हो अभी, तो वो कहेंगे कि भगवान रूठा है। दादा ये तो सवलत वाला सिद्धांत हो गया। हाँ सवलत वाला, परंतु ऐसा आरोप उसके ऊपर नहीं देना चाहिए। वकील ऊपर आरोप डाले, दूसरे किसी और पर आरोप डाले तो ठीक है, परंतु भगवान ऊपर आरोप दे सकते हैं? वकील तो दावा करके भी हिसाब ले लेगा, परंतु इसका कौन दावा करेगा? इस फल में तो अगले जन्म में भी भयंकर हथकड़ी लगेगी। भगवान का नाम देकर आक्षेप दिया जाता है कभी? नहीं दिया जा सकता दादा, नहीं तो कहेंगे स्टार्स फेवरेबल नहीं है, नहीं तो ये मेरा भागीदार खराब है ऐसा कहेंगे, नहीं तो लड़के की बहू छप्पर पैर वाली है, मोर पैर वाली ऐसा बोलते हैं, परंतु खुद के सर पे आने नहीं देंगे। खुद के सर पे गुना कोई लेता नहीं है कभी। एक फॉरेन वाले की मेरे साथ बातचीत हुई थी, वो कहता है आप हिंदुस्तानी सर पे गुना क्यों नहीं आने देते? मैंने कहा यही इंडियन पजल है, बड़े से बड़ा पजल हो तो हिंदुस्तान का यही है। सब हेडिंग विरोधाभासी कर्तापन। यह जो अपने आप स्वयं ही संयोग मिलता है और वियोग भी अपने आप स्वयं ही हो जाता है। यह तो अपने आप स्वयं ही संयोग मिलता है और वियोग भी अपने आप स्वयं ही होता है, लेकिन मनुष्य व्यर्थ अहंकार से बोलता है कि मैंने ऐसा किया कैसा किया। कमाता है वहां तक मैं कमाया कहेगा, और जब नुकसान होता है तब ठंडागार, ऐसे छाती बैठ जाती है, फिर कहेगा मैं क्या करूं। कोई दफा ऐसा नहीं बोलता है कि मैं काय करूं? बोलता हूं ना, अभी स्वयं करने वाला हो तो मी काय करूं, ऐसा वो नहीं बोलेगा। कड़ी गिर गई तो मैं क्या करूं कहता है, अरे कड़ी अच्छी हुई तब मैंने की वैसा कहता है, और कड़ी गिर गई तब कहेगा मैं क्या करूं ऐसा कैसा। मैंने बैलेंस शीट नतीजा निकाल दिया, ये सब ऐसा कहते हैं ना। अच्छा हुआ तब कहेगा देखो मैंने इंजेक्शन दिया इसलिए अच्छा हो गया, नहीं तो वह बैठ ही नहीं सकता था, और मर गया तो कहेंगे कि मैं क्या करूं इससे। अरे ऐसे आधारहीन बातें कैसे करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, नींद में से उठे या उठा गया। यहां तो सुबह में जल्दी उठा तो कहेगा कि मैं उठा, अरे तू जल्दी उठने वाला है, फिर जब रात को नींद नहीं आती है तब कहता है मुझे नींद नहीं आती, अरे अगर तू उठने वाला हो तो सो जाओ ना, परंतु सत्ता ही नहीं है किसी प्रकार की। कोई पूछेगा कि सुबह में किसने उठाया मुझे, तब मैं कहता हूं कि नींद पूरी हो गई, वह कर्म पूरा हुआ इसलिए तू उठा, कर्म ने ही तुझे उठाया है। सब हेडिंग, खुद की सत्ता कितनी। आपने किसी दिन खाया भी नहीं है, आपने किसी दिन खाया भी नहीं है, ये तो सब चंदुलाल खाता है, और आप मन में मानते हो कि मैंने खाया। खाते हैं चंदूलाल, और संडास भी चंदूलाल ही जाते हैं। आप तो बगैर काम से इसमें फंस गए हो, यह आपको समझ में आता है कि नहीं? आपको ये समझ में आता है ना? ये समझाइए दादा, तत्श्री, इस जगत में कोई भी आदमी संन्यास जाने का भी स्वतंत्र सत्ता वाला पैदा ही नहीं हुआ है। संन्यास जाने की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो दूसरी कौन सी सत्ता होगी? यह तो जहां तक खुद की मर्जी के मुताबिक थोड़ा बहुत होता है, इसलिए मन में मान लेता है कि मेरे से ही ये सब हुआ। जब अटक जाएगा तब मालूम होगा। मैंने फॉरेन रिटर्न डॉक्टर्स को यहां बड़ौदे में इकट्ठे किए थे, 10-12 डॉक्टर्स को। मैंने कहा, संन्यास जाने की स्वतंत्र शक्ति आप कोई में है नहीं, या है या नहीं है, इसलिए वह ऊपर से नीचे होने लगे। बाद में मैंने ही कहा कि वह तो जब अटक जाएगा तब मालूम पड़ेगा, तब वहां आपको किसी और की हेल्प मदद लेनी पड़ेगी ना, इसलिए यह आपकी खुद की शक्ति नहीं है, यह तो आप भ्रांति से कुदरती शक्ति को आपकी शक्ति आप अपनी शक्ति मान लेते थे। पर सत्ता को खुद की सत्ता मानते हैं, उसी का नाम भ्रांति। यह बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आती है ना? दो आनी या चार आनी समझ में आई? हाँ दादा, समझ में आती है। दादाश्री कहते हैं, इतना भी समझ में आ गया तो काम हो गया, तो वो सॉल्व हो जाएगा। ये सारे लोग जो बोलते हैं ना कि मैंने इतना जप किया, इतना तप किया, इतना उपवास किया, ये सारी ही भ्रांति है। फिर भी जगत तो ऐसा ही रहेगा, अहंकार किए बिना रहने वाला नहीं है, स्वभाव ही है ना। नेक्स्ट सब हेडिंग, इट हैपन्स। इसलिए जो होता है वो अपनी सत्ता से होता है कि खुद बखुद हो जाता है? प्रश्नकर्ता कहते हैं, खुद बखुद हो जाता है दादा। हाँ, ये सब होता ही रहता है, इट हैपन्स है। ये तो आप सुबह में उठते हैं, वो इट हैपन्स। फिर चाय पीते हैं, वो भी इट हैपन्स। फिर संन्यास जाते हैं, सो जाते हैं, ये सब इट हैपन्स की खुद इट हैपन्स की खुद करते हो। नौकरी करते हैं वो इट हैपन्स है कि तुम खुद करते हो? इट हैपन्स हो जाती है दादा। हाँ, तो वर्ल्ड क्या है? जो हो रहा है वो इट हैपन्स हो रहा है। ये सब हो रहा है और ऊपर से खुद क्या कहते हैं, ये मैं करता हूं, मैं संन्यास जाके आया, मैंने ऐसा किया, मैं कमाता कहता है। कोई भी चीज हो रही हो और उसे हम कहेंगे कि हम करते हैं तो क्या होगा? करने वाला दूसरा कोई और है और हम उसे आक्षेप करते हैं कि मैंने किया, इसका नाम ही अहंकार है। इसलिए ये इट हैपन्स हो रहा है, उसमें हम भी वो रहे हैं। यदि वी न डाले तो मुक्त हो जाएगा, यदि बी न डाले, ये जो हो रहा है ना उसमें हम बी बो रहे हैं, यदि बी न डाले तो मुक्त हो जाएगा, परंतु बी तो बोए बगैर रहेगा ही नहीं, परंतु बी तो बोए बगैर रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट हेडिंग।